दिन भर शुक्रवार 2 अक्टूबर मैं हूं निखिल रंजन। बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली, दो दिवाली मनाने का दावा।
बुलेट की कोख से सिवाय विनाश कुछ पैदा नहीं होता है, लेकिन बैलेट की कोख से विकास पैदा होता है। इस बार बिहार दो दिवाली मनाएगा।
दादरी में मंदिर के पुजारी का दावा, जबरदस्ती कराई गई गोमांस खाने वाले के बारे में घोषणा। विवेचना में बात आज उन दो नेताओं की जो एक दूसरे से हजारों मील दूर पैदा होकर भी आपस में होड़ लगाते रहे।
When conscience-stricken British officials wrote to him, pointing out that people were dying because of this decision.
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और लालू यादव को जमकर निशाने पर लिया। बांका में रैली में मोदी ने कहा कि बिहार के लोग अब विकासवाद को वोट देकर देखें। मोदी ने कहा कि बिहार में अभी जो सरकार है उसका अहंकार इतना ज्यादा है कि अगर वो कुछ भी भेजें तो वो सरकार उन्हें वापस कर देती है। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जो बुलेट पर विश्वास करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि बुलेट से विनाश ही पैदा होता है और बैलेट की कोख से विकास पैदा होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोदी को जवाब देते हुए कहा है कि आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार करने के आरएसएस के सुझाव पर मोदी चुप क्यों रहे। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर अपने रोडमैप का ऐलान कर दिया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 35 से 33 फीसदी की कमी की जाएगी। इसका आधार साल 2005 को बनाया गया है। पेरिस में नवंबर में होने वाली जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस से पहले भारत ने यह ऐलान कर दिया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये रोडमैप भारत की बेहतरी के लिए है।
Though we are not part of the problem, we want to be part of solution, and therefore we have done.
हम समस्या का हिस्सा नहीं है बल्कि हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए हमने उत्सर्जन में करीब 3.59 अरब टन को टालकर काफी बड़ा योगदान दिया है। वैज्ञानिक विज्ञान के बारे में सोचेंगे, लेकिन हमने तय किया है कि हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी और साफ मौसम चाहिए, और ऊर्जा भी स्वच्छ होनी चाहिए। ये थे प्रकाश जावड़ेकर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओरेगॉन राज्य में गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिका में लोगों के बंदूकें रखने पर नियंत्रण रखने की बात कही है। ओबामा ने चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाओं, हत्याओं की घटनाओं को लेकर अमेरिकी लोग सुन्न हो गए हैं और बंदूकों तक लोगों की आसान पहुंच को भी बदला जाना चाहिए। अमेरिका में सोमवार को ओरेगॉन राज्य में उमक्वा कम्युनिटी कॉलेज में हुई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस के अनुसार इस हमले में 7 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी करने वाले संदिग्ध की पहचान 26 साल के क्रिस हार्पर मार्सर के तौर पर की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस शख्स ने गोली चलाने से पहले लोगों से उनका धर्म बताने के लिए कहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलां के बीच पेरिस में मुलाकात जारी है, जिसमें सीरिया में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा हो रही है। सीरिया में रूसी हमलों में तेजी लाई गई है। फ्रांस के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन और फ्रांस्वा ओलां ने सीरिया में हवाई हमलों, आम लोगों की सुरक्षा और बशर अल असद को लेकर मतभेदों को खत्म करने पर चर्चा की। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। जैसा कि आपने खबरों में सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार वहां गए थे। बांका जिले में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान विरोधी दलों की उन्होंने जमकर आलोचना की और उन्हें बिहार के पिछड़ेपन का दोषी बताया।
गरीब को रहने के लिए छत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 60 साल हो गए भाइयों बहनों, ये गरीबों की बातें करने वाले लोगों ने गरीब को रहने के लिए घर तक नहीं दिया। मैंने बीड़ा उठाया है भाई, मैंने बीड़ा उठाया है कि मुझे हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जब आजादी के 75 साल होंगे 2022 में, तब तक हिंदुस्तान के हर गरीब को उनका अपना घर हो। जरा बताइए, अमीर की बेटी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? अगर नहीं पढ़ने का मौका मिलता तो गरीब की बेटी को नहीं मिलता ना, तो गरीब की बेटी को पढ़ाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, गरीब की बेटी की शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इतने साल तक सत्ता में बैठे लेकिन उनको गरीब की बेटी को पढ़ाने का विचार नहीं आया। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम उठाया कि नहीं उठाया? ये मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है।
नरेंद्र मोदी ने जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
अभी जो सरकार है उनके हाथ में एक रुपया देना चाहिए क्या? अगर दिया तो कुछ आपके पास पहुंचेगा क्या? और उनका तो अहंकार ऐसा है कि पता नहीं मैं भेजू तो भी वापस कर दे शायद, वो तो घोषणा कर देंगे हमें नहीं चाहिए मोदी का पैसा, नहीं चाहिए। अरे ये पैसा मोदी का नहीं है, ये बिहार की जनता के हक का पैसा है। लेकिन इन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, कोई भरोसा नहीं कर सकता है। जीतन राम जी आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं बताओ, आपके साथ क्या किया उन्होंने? जीतन राम जी के साथ जो किया कोई इस पे भरोसा करेगा क्या? कोई करेगा क्या? अब बिहार की जनता कतई भरोसा नहीं कर सकती भाई।
चुनावी रैली की भाषा में प्रधानमंत्री ने कई जुमले भी उछाले और माओवादियों को भी अपने संबोधन का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में दो दिवाली मनेगी।
इस चुनाव में विकास के मुद्दों पर आपसे वोट मांगने आया, कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर वोट मांगने आया हूँ। बुलेट की कोक से सिवाय विनाश कुछ पैदा नहीं होता है, लेकिन बैलेट की कोक से विकास पैदा होता है। अगर एक रैली कोई कर देता इतनी बड़ी एक रैली, तो भी सारी दुनिया मान लेती कि भाई अब बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई। ऐसा माहौल ये इस बात का परिचय दे रहा है, इस बार बिहार दो दिवाली मनाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांका की चुनावी रैली में और उनके लगाए तमाम आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि वो आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात क्यों नहीं कहते। और अब हम रुख करते हैं दादरी का। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस खाने की अफवाह जिस मंदिर के लाउड स्पीकर से फैलाई गई थी, उस मंदिर के पुजारी का कहना है कि दो लोगों ने जबरन उनसे ये घोषणा करवाई थी। मंदिर के पुजारी बाबा सुखदास ने बीबीसी को बताया कि रात में दो लोगों ने जबरन उनसे ऐसा करवाया।
मेरा नाम सुखदास महात्मा है और मेरे चेले का नाम है रवनदास महात्मा।
तो उस दिन के बारे में थोड़ा सा आप अपने से बता दीजिए कि क्या हुआ था।
ऐसा हुआ कि हम दोनों के दोनों गुरु चेला अंदर लेट चुके थे, तो यहाँ पर दो लड़के आए। उन्होंने कहा महाराज जी गेट खोल लो। हमने कहा भाई क्या बात है? ना जी गेट तो खोल लो आप। हमने गेट खोल दिया, बोले एक अनाउंसमेंट करना है। ना कैसा करना भाई? और कैसे करना कि यहाँ सड़क पे बड़े ट्रांसफार्म पे किसी ने गाय को काट कर डाल दिया और गांव वाले इकट्ठे हो जाओ। तो कहने लगे, हमने हमारा शिष्य कहने लगा भैया इनकी तबीयत खराब है गुरुजी की, आप खुद कर लो। वो कहने लगे गुरुजी की तबीयत खराब इतना कहने में क्या परेशानी हो जाएगी, जब ये रोज़ अलाउंस करते हैं, सब्जी वालों का करते हैं, किसी कपड़े वालों का करते हैं, क्या इतना नहीं कर सकते? वो कहने लगे कि तुम कर दो। अब ये तो ज़्यादा बोलना नहीं जानता इतना, तो हमने जो है ना इतना बोल दिया कि भैया किसी ने बड़े ट्रांसफार्म पे गाय को काट कर डाल दिया है, आप सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो जाओ, हमारा इतना ही रोल है जी, बाकी हमारा कोई रोल नहीं है।
तो उसके बाद से फिर लोग आके आपको परेशान करने लगे क्या?
नहीं, लोग बागों ने परेशान नहीं करा, लोग बाग तो भागे घूम रहे थे गाँव में को। फिर यहाँ पुलिस आई, उन्होंने हमारे बयान लिए, वहाँ ले जाकर हमारे बयान लिए, फिर वो लड़कों को दिखा, भाई जो होगा तो उसको पहचानने के झूठ के बोल लगे हम। हमारे सामने वो लड़के नहीं आए, जो भी थे उन्होंने गाड़ी में उनको बैठाया, हमें गुरु चिल्ला को बैठा कर थाने ले गए।
तो बाद में आपको पता चला होगा कि क्या ये घटना सही थी या गलत थी?
देखो सर मेरी बात सुनो, हम तो कल ही तो आने लग रहे थाने में जी, अब हमें क्या पता सही है गलत है? यहाँ होते तो पता चलता। अब जैसे लोग बात कह रहे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा, सोच बहने किसकी बात सुनेंगे?
अब तो गाँव के लोगों ने बताया ही होगा कि वो सही
था। गाँव के लोग तो ये बता रहे, अब गांव का लोग कौन बताएगा? कोई तो कह रहा है भाई सही थी, कोई कह रहा है गलत थी, अब बता किसकी बात का विश्वास करेंगे? हम तो भारी निकले, हम तो बुखार में, मेरे तो दवाई भी रखी है यहाँ पर, डॉक्टर ही मौजूद है, मेरी रिपोर्ट भी पुलिस वालों के हाथ में थी, पता नहीं उन्होंने डाल दी कहाँ ले गए, रिपोर्ट तो हो रही बन जाएगी। टाइफाइड बुखार मलेरिया में था मैं, मेरे बच्चे ने खुद सबको कहा है गुरु जी की तबीयत खराब है, वो किसी की बात नहीं मान रहे। बोला तो हमारे गांव में रहते हो, हमारे मंदिर में रहते हो, तो बताओ क्या करेंगे सर, आप ही बताओ
जी।
जब गांव वाले कहेंगे कोई हमें कहकर भाई हमें कपड़ा बेचना है, हमारे कपड़े का अलाउंस कर दो, हमारा फला चीज़ का अलाउंस कर दो, ये तो मंदिरों में चलता ही रहता है, अलाउंस तो होते रहते हैं मंदिरों में। कोई कीर्तन भी करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हारमोनी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, हमारा काम तो सत्संग करने है, भजन करने है, बताओ हम क्या ऐसे काम में फिर महात्मा क्यों बने, हम क्या हम किसी बुरा चाहेंगे, बताओ आप ही।
दादरी में गोमांस खाने की अफवाह जिस मंदिर के लाउडस्पीकर से फैलाई गई, उस मंदिर के पुजारी का कहना है कि दो लोगों ने जबरन उनसे ये घोषणा करवाई। ये बातचीत आपने सुनी जो की थी हमारे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने, और इसी विषय पर है इस बार का इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में बीफ खाने के संदेह में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सवाल गर्म है कि क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, ये कौन तय करेगा। बीबीसी इंडिया बोल में यही है बहस का विषय। शनिवार शाम 7:30 बजे अपनी राय रखने के लिए आप हमें 1811-7000 और 1811-7001 पर मुफ्त फोन करें।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिनभर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ, और अब उस ऐलान की चर्चा करते हैं जो हमारी आबोहवा से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के एक बड़े लक्ष्य का ऐलान किया है। ये ऐलान कितनी उम्मीदें जगाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे किस रूप में देख रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने लंदन में बीबीसी के विज्ञान संवाददाता नवीन खड़का से पूछा कि इस घोषणा की कितनी अहमियत है।
देखिए, अगर आप भारत से पूछें तो भारत के अधिकारियों यही बोल रहे हैं कि ये काफ़ी महत्वाकांक्षी और काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये जो कुल उत्सर्जन में कटौती नहीं है, ये जो है आपकी जो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी बोलते हैं ना जिसे, उसके पर यूनिट में जो एनर्जी खर्च होती है उसमें कटौती करनी है। तो इसकी अर्थ ये होता है कि कुल उत्सर्जन जो है वो बढ़ती जाएगी, ये भारत भी खुद भी बोल रहा है। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है ये उसके कुछ पक्ष में कुछ आलोचना कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत से उम्मीद क्या कर रहा है?
ये जो चीन और अमेरिका ने जो घोषणा की कुल उत्सर्जन में कटौती करने की, तो इसके बाद भारत जो कि विश्व की तीसरी सबसे जो ज्यादा उत्सर्जन करने वाली देश है, तो भारत से भी यही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षा ये थी कि भारत भी कुल उत्सर्जन की कटौती की घोषणा करेगी, लेकिन ये नहीं हुआ। इसीलिए पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन की जो समिट होनी है दिसंबर को, तो वहां शायद भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस मुद्दे पर नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, और ये देखनी अब बाकी है कि इससे बात बनती है या बिगड़ती है।
ये जो कदम है ये अभी बाध्यकारी नहीं है, औपचारिक भी नहीं है बहुत तरीके से, ये अपने आप जो देश हैं वो घोषणाएं कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब बाध्यकारी घोषणाएं होंगी, जब ये तय कर दिया जाएगा कि हाँ ये करना ही है, इसमें आप पीछे नहीं हट सकते, तो उस वक्त घोषणाओं का ज्यादा महत्व होगा?
जी, जब ये पेरिस में जब बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, तब क्या होगी कि देखिए जो प्लान भारत ने जो यूएन को जो सबमिट किया है, इसी तरह से बाकी की जो मेंबर कंट्रीज है यूएन की क्लाइमेट कन्वेंशन की, ये सब के सब अपने प्लान पेश कर रहे हैं, कर चुके हैं बहुत बहुत सारे। तो अब जो करने क्या है कि सब के सब मिलाकर वो देखेंगे कि जो दुनिया की टेम्परेचर राइज 2 डिग्री तक लिमिट करने की के लिए जो आवश्यक है कटौती, वो काफ़ी है या नहीं, ये देखेंगे ये। तो जाहिर कि अब तक जो प्लान सबमिट हो चुके हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये काफ़ी नहीं होंगे, तो तब जैसे कि आपने कहा, तब जाकर जो फॉर्मल नेगोशिएशन होंगे, तब वहाँ गर्मा गर्मी होगी कि अब किसको कटौती करनी है। तो तब अमेरिका और चीन जैसे जो मुख्य खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो कहेंगे कि हमने तो कुल उत्सर्जन की घोषणा कर, तो भारत पर तब जोर पड़ सकता है, और भारत तब क्या किस तरह से काउंटर करेगा ये हमें देखनी ही होगी।
ये थे बीबीसी के विज्ञान संवाददाता नवीन खड़का, जो ये बता रहे थे कि भारत सरकार ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती का जो ऐलान किया है वो कितना अहम है। और अब रुख करते हैं अमरीका का। अमरीका के ऑरेगन राज्य में उम्पक्वा यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुरुवार को खुलेआम गोलीबारी करने वाले युवक की पहचान क्रिस हार्पर मर्सर के रूप में की गई है। हादसे के बाद बयान देते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हथियारों के सख्त कानूनों की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि अब प्रार्थना काफ़ी नहीं है, पूरे कॉलेज की तलाशी चल रही है, लेकिन अब तक हमलावर के मकसद का पता नहीं चल पाया है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी खबरों का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
Copy, we're sending ambulances in right now. ये आवाजें हैं पुलिस कर्मियों की जो बता रहे थे कि हमलावर अब मारा गया है। अमरीका में गुरुवार को ओरेगन राज्य में उम्पक्वा कम्युनिटी कॉलेज में हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए। पुलिस के अनुसार इस हमले में 7 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। गोलीबारी में मारे गए लोगों के बारे में विरोधाभासी खबरें मिल रही थीं, लेकिन डगलस काउंटी के शेरिफ जॉन हेनलिन ने कहा कि 10 लोग ही मारे गए हैं। इस हादसे के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शस्त्र कानून को कड़ा करने की मांग करते हुए कहा है कि अब प्रार्थना काफी नहीं है।
As I said just a few months ago, and I said a few months before that, and I said each time,
जैसा मैंने कुछ महीनों पहले कहा था और उससे और कुछ महीनों पहले, और हर बार जब ऐसी गोलीबारी की खबर आती है कि अब प्रार्थना काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। प्रार्थना हमारे दर्द और चिंता और गुस्से को नहीं दिखा पाती, और ऐसा ही रहा तो फिर से अमरीका के किसी और शहर में हादसा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओबामा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं अब नियमित हो गई हैं। उन्होंने कहा कि धरती पर अमरीका ऐसा इकलौता देश नहीं है जहां दिमागी रूप से बीमार लोग दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अमरीका धरती में इकलौता ऐसा विकसित देश है जहां तकरीबन हर महीने गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। खबर है कि कम से कम 3,000 छात्रों वाले इस कॉलेज में गोलीबारी करने वाले युवक को पुलिस ने मार दिया है। पुलिस ने इस कॉलेज की इमारत की हर कमरे की तलाशी की। हमले के बाद कॉलेज की अध्यक्षा रीटा केविन ने कहा,
मुझे बेहद बेहद बुरा लग रहा है। कई परिवार छात्रों का इंतजार कर रहे थे और फिर इतना रोना और चीखें, सब खत्म हो गया। जिन्हें गोली लगी उनके परिवारों के अलावा बाकी लोग भी मानसिक रूप से डरे हुए हैं। इस हादसे की वजह से कई लोगों की पुरानी बुरी यादें ताजा हो गई हैं।
कॉलेज की अध्यक्षा रीटा केविन के शब्द। हमलावर को 26 वर्षीय क्रिस हार्पर मर्सर के रूप में मीडिया ने पहचान लिया है। गोलीबारी के पीछे हमलावर का इरादा क्या था, इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वे उन खबरों की जांच कर रहे हैं जिसमें हमलावर ने सोशल मीडिया पर अपने इरादों के बारे में चेतावनी दी थी। हमलावर के पिता इयन मर्सर का कहना था कि उनका परिवार इस हादसे से उतना ही अचंभित है जितना और कोई। ये सभी के लिए हैरान करने वाली बात है। मैं पुलिस और FBI से बात कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। ये बहुत ही बुरा दिन है मेरे पूरे परिवार के लिए। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करता हूँ, मुझे पता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, परंतु मेरी विनती है कि आप हमारी व्यक्तिगतता का ध्यान करें। हमलावर के पिता इयन मर्सर के शब्द। रोजबर्ग पुलिस विभाग के सार्जेंट आरोन डनबर ने बताया कि पूरे कॉलेज को तत्काल बंद कर दिया गया है। इस हादसे के बाद कई सौ लोग सार्वजनिक रोजबर्ग पार्क में इकट्ठा हुए और शांति प्रार्थना की।
अमरीका के ओरेगन राज्य में उम्पक्वा कम्युनिटी कॉलेज में गुरुवार को खुलेआम गोलीबारी करने वाले युवक की पहचान हो गई है। BBC संवाददाताओं की भेजी खबरों का सार सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव। BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ, और अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम विवेचना का। दो शख्स 5 साल के अंतराल पर और एक दूसरे से 4,000 मील की दूरी पर इस दुनिया में आए और न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया के चोटी के नेता बन गए। एक का नाम था विंस्टन चर्चिल और दूसरे का महात्मा गांधी। दोनों ताउम्र एक दूसरे के प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी बने रहे। गांधी जयंती पर इन दोनों दिग्गजों की मशहूर स्पर्धा का हाल बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
सितंबर 1931 को एक ठंडे नम दिन खादी की धोती पहने और गोल फ्रेम का चश्मा लगाए एक नाटा शख्स ब्रिटेन के फॉकस्टोन बंदरगाह पर उतरा। उसके स्वागत में वहां कई प्रेस रिपोर्टर, सांसद और खुद कैंटरबरी के डीन वहां खड़े थे। अगले 2.5 महीनों तक महात्मा गांधी का गंजा सिर, नंगे पैर और ब्रिटानी प्रेस के शब्दों में उनका लॉयन क्लॉथ और शॉल लंदन की सड़कों का आम फहम दृश्य बना रहा। जब वो ह्यूस्टन रोड पर अपने दोस्त के घर रहने पहुंचे तो बारिश के बावजूद सैकड़ों लोग उनकी झलक भर पाने के लिए वहां मौजूद थे। वैसे तो गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए थे, लेकिन उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल ब्रिटेन के आम लोगों के नजदीक आने के लिए किया। वो लंकाशायर उन कपड़ा मिल मजदूरों से मिलने गए जिनके बारे में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर गांधी का बस चला तो जल्द ही उनको काम मिलने के लाले पड़ जाएंगे। गांधी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा,
of being surrounded by these happy children and seeing the homes of the poor.
गांधी मशहूर अभिनेता चार्ली चैपलिन से भी मिले और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने भी उन्हें बकिंगहम पैलेस चाय पर बुलाया। मशहूर इतिहासकार आर्थर हरमन अपनी किताब गांधी एंड चर्चिल द एपिक राइवलरी में लिखते हैं,
ये मुलाकात नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया सर सैमुअल होर के सौजन्य से हुई थी। पहले तो राजा ने इस विद्रोही फकीर से मिलने से इनकार कर दिया था। गांधी भी इस बात पर अड़ गए थे कि वो राजा से मिलने धोती और अपनी खादी की शॉल में ही जाएंगे। बाद में होर के जोर देने पर ये बैठक हुई, लेकिन उन्होंने राजा को बुदबुदाते सुना कि ये नाटा आदमी पर्याप्त कपड़े भी नहीं पहने हुए था। चलते चलते राजा गांधी से अपने आप को कहने से नहीं रोक पाए, याद रखिए मिस्टर गांधी, मैं आपकी तरफ से अपने साम्राज्य पर किए गए किसी वार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। गांधी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं आपके महल में आपकी मेहमान नवाजी के बाद आपसे किसी राजनीतिक बहस में नहीं उलझना चाहूंगा।
बाद में जब गांधी से पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि शाही मुलाकात के लिए आपका परिधान उपयुक्त था, उन्होंने छूटते ही जवाब दिया था, राजा ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े पहन रखे थे। रॉबर्ट पेन अपनी किताब लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा में लिखते हैं,
इससे पहले भारत में ब्रिटेन के पूर्व वायसराय लॉर्ड इरविन जॉर्ज पंचम को बता चुके थे कि जब गांधी उनसे मिलने वायसराय हाउस आए थे तब भी वो भवन के चमचमाते संगमरमरी हॉल में अटपटे से दिखाई दे रहे थे, लेकिन तब भी आप उनकी छोटी लेकिन तेज आंखों के पीछे की नैतिक शक्ति को महसूस कर सकते थे। उनका दिमाग तब भी बहुत अधिक स्फूर्तिवान था।
लेकिन उस समय ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के उभरते हुए नेता विंस्टन चर्चिल को गांधी इरविन की वो मुलाकात बहुत नागवार गुजरी थी। उन्होंने कहा था,
मिस्टर गांधी जैसे राजद्रोही मिडिल टेंपल वकील का अर्धनग्न हालत में वायसराय के महल की सीढ़ियां चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि के बराबर के स्तर पर बात करना बहुत खतरनाक और घृणास्पद था, खासकर तब जब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह का दृश्य भारत में अशांति को बढ़ा सकता है और वहां पर काम कर रहे श्वेत लोगों को परेशानी में डाल सकता है।
ये गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। गांधी के भारत लौटने के कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब सुबह 3 बजे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई तो गांधी के साथ मशहूर मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन भी थे।
गांधी जी वोक अप एंड गेव द पुलिस अ वेरी चार्मिंग स्माइल।
गांधी जैसे ही जगे उन्होंने पुलिस वालों को बहुत मोहक मुस्कान दी, लेकिन ये उनके मौन का दिन था इसलिए उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनसे इशारों में ही पूछा कि माजरा क्या है। उन्होंने उन्हें तैयार होने के लिए आधा घंटा दिया। इस बीच गांधी जी ने स्नान किया और पर्चियों पर कई संदेश लिखे। एक पर्ची उन्होंने मुझे भी दी जिसमें लिखा था कि सभी अंग्रेजों को ये बता दीजिए कि वो उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने देशवासियों को, वो उनके खिलाफ दुर्भावना में कुछ भी नहीं करेंगे।
1942 में जब पता चला कि गांधी अनशन पर जाने वाले हैं तो चर्चिल की वॉर कैबिनेट ने तय किया कि गांधी को मरने दिया जाएगा। जब गांधी का अनशन कुछ लंबा खिंच गया तो चर्चिल ने वायसराय लिनलिथगो को पत्र लिखा,
मैंने सुना है कि गांधी अपने अनशन के ड्रामे के दौरान पानी के साथ ग्लूकोज ले रहे हैं, क्या इस बात की जांच कराई जा सकती है? अगर इस जालसाजी का भंडा फूटता है तो ये हमारे लिए बेशकीमती होगा।
मार्टिन गिलबर्ट अपनी किताब रोड टू विक्ट्री में लिखते हैं कि लिनलिथगो ने बाकायदा इसकी जांच करवाई और चर्चिल के आरोप गलत पाए गए। जब बंगाल के सूखे के दौरान लॉर्ड वेवल ने भारत को तुरंत अनाज भेजे जाने की मांग की तो चर्चिल इतने नाराज हुए कि उन्होंने फाइल पर लिखा कि गांधी अब तक मरे क्यों नहीं है। पिछले दिनों जब शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उपनिवेशवाद पर अपना बहुचर्चित भाषण दिया तो इस घटना का भी जिक्र उन्होंने किया।
When conscience-stricken British officials wrote to him, pointing out that people were dying because of this decision, he peevishly wrote in the margins of the file, "Why hasn't Gandhi died yet?" And no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark.
जब गांधी ने भारत की आजादी के आश्वासन के बदले ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद की पेशकश की, तो चर्चिल ने कहा,
वायसराय को इस देशद्रोही से बात नहीं करनी चाहिए और उसे दोबारा जेल में डाल देना चाहिए।
सालों बाद चर्चिल ने स्वीकार किया कि उनके चुनाव हारने से सिर्फ एक अच्छी बात यह हुई कि जब भारत को आजादी देने का फैसला लिया गया तब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं थे। 5 साल पहले जिस शख्स ने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया था कि हम अनिश्चित काल तक भारत पर राज करते रहेंगे, ये फैसला लेना उसका सबसे बड़ा अपमान होता। 17 जुलाई 1944 को गांधी ने चर्चिल को एक पत्र में लिखा था,
मैंने सुना है कि आप एक साधारण नंगे फकीर को कुचल देना चाहते हैं। मैं बहुत लंबे समय से फकीर होने की कोशिश कर रहा हूँ। नंगा होना और भी मुश्किल काम है। आपने मेरे लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसको मैं अपनी तारीफ के तौर पर लेता हूँ, हालांकि ऐसा करने का शायद आपका इरादा नहीं था। मेरी दिली इच्छा है कि आप मुझ पर भरोसा रखें और अपने और हमारे लोगों के लिए मेरा इस्तेमाल करें।
चर्चिल के करीब जाने की ये गांधी की आखिरी कोशिश थी। चर्चिल ने गांधी के खत का जवाब नहीं दिया क्योंकि ये खत उन तक पहुंचा ही नहीं। अगर वो जवाब देना भी चाहते तो भी वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन की जनता ने दूसरे विश्व युद्ध में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले विंस्टन चर्चिल को सत्ता से बेदखल कर दिया था और भारत की आजादी का रास्ता साफ हो गया था।
एक धोती, एक चश्मा, एक लाठी के सहारे उसने दुनिया जीत ली थी सिर्फ करनी के सहारे। एक धोती, एक चश्मा, एक लाठी के सहारे उसने दुनिया जीत ली थी सिर्फ करनी के सहारे। हिल गई थी सारी दुनिया ऐसा नारा बन के लौटा वो अंधेरा।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना के बारे में अपनी राय हमसे ज़रूर बताइएगा। और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें लेकर के आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं, बताइए क्या है।
जी निखिल, इस समय अगर क्रिकेट की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच धर्मशाला में पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां आज दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फैफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और इस समय भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है और फिलहाल भारत का स्कोर 12वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 107 रन है। और इसी बीच रोहित शर्मा के बल्ले से एक और छक्का निकला, इसके साथ ही भारत का स्कोर 113 रन पर पहुंच चुका है। और अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। भारत की ओर से एकमात्र आउट होने वाले खिलाड़ी रहे हैं शिखर धवन, जो रन आउट हुए थे जब उनका व्यक्तिगत स्कोर केवल 3 रन था। और रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं विराट कोहली, जो 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैसे आज अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो इन खिलाड़ियों के अलावा सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, अंबाती रायडू, अक्षर पटेल, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा और एस अरविंद को मौका दिया गया है। अगले कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में अभी जो सरकार है उसका अहंकार इतना है कि मैं कुछ भेजूं तो भी वो वापस कर देंगे। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर अपने रोडमैप का ऐलान कर दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 35-33% की कमी की जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलां के बीच पेरिस में मुलाकात जारी है, जिसमें सीरिया में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान, कराची और कबायली इलाकों में चरमपंथी गतिविधियों में भारत में शामिल होने के बारे में डोजियर सौंपा है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिन भर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने। सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।